कर सको ontario.ca/bids ते जाके होर जानो। इस दी अदायगी ओंटेरियो सरकार वालों कीती गई है।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
10 दिन हो गए तेन स्नेहा लाई नू, पर तू इग्नोर ही कर रहा। फोन इग्नोर हो जूगा, गोलियां इग्नोर नहीं होनी। आपदा ते आपदे परिवार दा ध्यान रखी, फिर ना कहीं भी दस्या नहीं।
जस्टिन ट्रूडो दियां सॉफ्ट ऑन क्राइम पॉलिसीज दी वजह नाल एक्सटॉर्शन राइज ते है। लिबरल्स ने एक्सटॉर्शन ते पेनल्टीज भी घटा दित्तियां हन। इस दौरान पियर पॉलीएफ एक्सटॉर्शन दे अगेंस्ट बिल लेके आए सन अते जस्टिन ट्रूडो ते जगमीत सिंह ने इस दे खिलाफ वोट कीती। हुण सिर्फ कॉमन सेंस कंजरवेटिव्स ही कैनेडा दा माहौल ठीक कर सकदे ने। ब्रॉट टू यू बाय पियर पॉलीएफ एंड कैनेडास कंजरवेटिव।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन 9058747171।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वालों एक सुनेहा। ब्रैम्पटन नूं माण है शानदार कलाकारां, समूहां ते संस्थावां दे जश्न मनाउण दा, जो कि मुफ्त ते दिलचस्प कला दे तजर्बे भाईचारे विच लियांदे हन। जेकर तुसी भी एक वर्कशॉप अजमाउण विच दिलचस्पी रखदे हो, जां फिर एक कलाकार गल्लबात विच शामिल होना चाहुंदे हो, जां फिर नवे हुनर नूं सिखणा जां प्रदर्शन करना चाहुंदे हो, तां सभ्याचारक दिनां दौरान यानी कि 20 सितंबर तों 13 अक्टूबर तक हर एक अते हर उमर लई कुछ ना कुछ है। होर जानकारी लई brampton.ca/culturedays ते जाओ।
चांदनी बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल।
30 years ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट इवेंट, एग्जीबिशन, एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन,
इंडोर एंड आउटडोर गोल्फ कोर्स फैसिलिटीज, चांदनी बैंक्वेट हॉल। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल टुडे एट 9054588888, 9054588888, और विजिट chandnivictoria.ca।
स्ट्रेस चाहे लाख का हो या काकता, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157, 416-570-0157।
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेज के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आते हैं इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं। कॉल हैरी सॉन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही बेटी की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन। पायल उसके असलम भाई को कॉल करें ना एट 9057907879, दैट इज 9057907879।
सोना कर लिया, हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इस तो अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, ते टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्क, हर साइज से हर ब्रांड दा टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन, या कॉल करो 9054502828 905 450 2828
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट विल बी ऑन ए चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872।
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो।
अरे खैरियत तो है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहाँ की तैयारी है?
हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मूविंग होगी।
आप परेशान ना हो, आपकी मूविंग का सिर्फ एक ही हल है, 786 मूविंग प्लस।
अच्छा, वो कैसे?
786 मूविंग प्लस वाले अपार्टमेंट, हाउस, ऑफिस, स्टोरेज और कमर्शियल मूविंग में स्पेशलाइज करते हैं। मूविंग एंड डिलीवरी, पैकिंग एंड अनपैकिंग, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, 24 आवर सर्विस, 7 डेज अ वीक, आवरली एंड फ्लैट रेट।
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी, फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें।
जी जी बिल्कुल, 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए 416-786-6000 416-786-6000।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान ताज़ा आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में पे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट। कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी है। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी ट्रेवल इंश्योरेंस हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 905-607-5000
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing check.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
जीजा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे फा मुजफ्फर आपके साथ, हमारा आपका साथ आज भी 7:30 बजे तक रहेगा। जाहिर है सितंबर के एंड आने का है, अपने आखिरी आवर्स के चंद जो हमारे साथी हैं उनसे हम इजाजत चाहेंगे। रीजन बीइंग के सितंबर और अक्टूबर में टाइम जो है फिर 6:30 तक हम आ जाएंगे, वो फिर एक घंटा ऊपर का जो है। जाहिर है ये सदा से रूटीन रही, 1997 से लेके आज तक हम देख लें तो इसी तरह चलता रहा। बहरहाल 770 AM आपका अपना चैनल है, आप अपनी गाड़ियों में सुनते हैं। इसके अलावा हमारा वेबसाइट eawaz.com, www.eawaz, बिकॉज आवाज का रिश्ता बजरिया इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हमारा आपके साथ है। तो eawaz, अगर आप हमारा न्यूज़पेपर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर है, तो हमारा आवाज का रिश्ता, अल्फाज का रिश्ता, तहरीर का रिश्ता इलेक्ट्रॉनिकली आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो वही ई आवाज। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान सोचता क्या है। मुझे याद है 1997 में जब इसका नाम ई आवाज रखा था तो तब तो ई इतना कॉमन नहीं था। मैं एक शख्स को जानती हूँ टोरंटो में, तो कहते हैं कि आरफाबा जी 2004 में मैंने सोचा कि आपसे मैं इसके राइट्स बाय कर लूं, क्योंकि फिर 2007-8 में आके फिर ई डॉक्यूमेंट शुरू हो गया था, इसका रुझान शुरू हो गया था। 1997 में तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, मगर ई आवाज जो था ना, इलेक्ट्रॉनिक आवाज के हवाले से इसका नाम रखा था। eawaz.com प्रोग्राम का नाम है, हमारी वेबसाइट eawaz.com हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे अगर आप तशरीफ लाते हैं तो टेलीविजन देख सकते हैं, रेडियो आप सुन सकते हैं, या फिर इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे जो लोग अपने घरों पे जाते हैं काम पे, देयर वाज अ टाइम कि वो लोग स्टक हो गए। मुझे एक दो लोगों की कॉल्स आज तक याद आती हैं कि हम अपने ड्राइववे में बैठे हुए और प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपको याद है?
ऑफ कोर्स।
और मगर फिर ये कि अब जब ई आवाज टेलीविजन 3 बजे के बाद रेडियो एंड टेलीविजन दोनों के तहत हम आपके साथ मिले हुए होते हैं, तो आप जब घर जाते हैं तो अपने आईपी बॉक्स पे जब आप उर्दू टेलीविजन प्रोग्राम्स पे जाते हैं तो ई आवाज। आज के प्रोग्राम में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जनाब इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ होंगे, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेरी फाइन पर्सनैलिटी। कल के प्रोग्राम को, जनाब तनवीर सुल्तान साहब के प्रोग्राम को, दूर परे हर जगह से मुझे लोगों की कॉल्स भी मिली हैं, लोगों का टेक्स्ट भी मिला है, पीपल इंजॉयड दैट प्रोग्राम। कल तनवीर सुल्तान थे, आज इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान से बराह रास्त शामिल होंगे। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है हम उन्हीं के साथ हाईलाइट करेंगे, हम उन्हीं न्यूज का एनालिसिस उनकी जुबानी लेंगे। आज के प्रोग्राम में भी हस्ते साबिक हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। मेगा मनी एक्सचेंज रकम पाकिस्तान भिजवाने के लिए काबिल एतमाद जरिया है, मेगा मनी एक्सचेंज 9052794754। आज डॉलर का रेट जो है वो 209 रूपये आपको मिलेगा। शबाहत या मिसेस शबाहत से बात कर लीजिएगा। अभी अभी आपने प्रोग्राम सुना और चरणजीत बरार साहब उस प्रोग्राम को पेश कर रहे थे। चरणजीत बरार, हकीकत में मैं یقین سے آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ میں یہ کوئی کمرشل ان کا کور نہیں کرتی. از اے ونڈرفل مین. ان کے پاس پاور آف سیل پہ, بالکل صحیح کہا, پاور آف سیل پہ ان کے پاس گیس اسٹیشنز ہیں. ایک گیس اسٹیشن کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ گیس اسٹیشن 6.5 ملین کا, اراؤنڈ 7 ملین پہ یہ گیس اسٹیشن بکا تھا. پھر یہ پاور آف سیل پہ آتا ہے, 5 لاکھ کچھ کا یہ پاور آف سیل پہ آیا. مگر کیونکہ ظاہر ہے جس نے لیا تھا اس نے 35% ڈاؤن پے کیا تھا اور بینک تو صرف اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں, پھر یہ 3 پوائنٹ کچھ کا بکا. ابھی بھی ان کے پاس, یہ میرا خیال ہے واٹر لو میں تھا, ابھی بھی ان کے پاس 2-1 گیس اسٹیشنز ہیں. اپ ٹو 4 ملین تک پرائس ہے, جن کی ایکچوئل پرائس واز مچ مور. اور ابھی ہمارے ساتھ شیراز آئیں گے کیونکہ آج بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے. شیراز شفیق سے ہم نے آپ کی ملاقات کرانی ہے, اکال مارگیجز سے آپ کا تعلق ہے. مارگیج میں ظاہر آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے, اب ٹروڈو گورنمنٹ نے فیورز لینی ہے اور ان کی جو کرسٹی آف فری لینڈ ہے اسی نے ڈبویا, اس مائی نے ڈبو دیا جسٹن ٹروڈو کو. مگر اب وہ تھوڑا اپنی غلطیوں کی درستگی کر رہے ہیں, اور درستگی میں سب سے پہلے تو انہوں نے انٹرسٹ ریٹس کو کاٹنا شروع کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ 1.5 ملین تک آپ 10% مارگیج پہ بھی گھر لے سکتے ہیں, 15% مارگیج پہ بھی گھر لے سکتے ہیں. بٹ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ کم از کم چھوٹا گھر لے لیں, ڈونٹ بائی بگ ہوم. چھوٹا گھر لے لیجیے گا مگر 20% ڈاؤن پیمنٹ ضرور کریں. جب آپ 10% ڈاؤن پیمنٹ پہ کرتے ہیں تو آپ امیجن کیجیے گا آپ کو سی ایم ایچ سی فی کتنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, سی ایم ایچ سی از وہ انشورنس ہوتی ہے جو آپ کو لینا پڑتی ہے, تو گورنمنٹ کی ہے. تو کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ 20% چھوٹا گھر لے لیں, کمپرومائز ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ انسان ایک دم سے آخری سیڑھی کے اوپر قدم نہیں رکھتا, گریجولی گرو کرنے میں زیادہ فائدہ ہے. میں بلکہ بڑی حیران ہوئی ہوں کہ ابھی چرنجیت برار صاحب اتنا اچھا پروگرام پیش کر رہے تھے, ہاؤ کم انہوں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ ان کے پاس پاور آف سیل پہ گیس اسٹیشن ہے. ایک چیز میں آپ لوگوں کو ضرور کہنا چاہتی ہوں, میں ہر بھائی بہن کو جس کے پاس, جس نے آج تک گھر نہیں لیا اور بڑے گھر کے چکر کے بیچ میں وہ چھوٹا گھر بھی نہ بنا سکا, دس از دی رائٹ ٹائم ٹو بائی اے ہوم. اٹس اے بائرز مارکیٹ, اٹس اے بائرز. بےچارا سیلر نقصان میں بیچ رہا ہے, بٹ اٹ از اے بائر مارکیٹ. آپ کسی طرح سے ایک گھر لے لیجیے گا, بیکاز ایک دم سے جب چھوٹ پڑنی ہے تو پھر کمپٹیشن بھی آ جانا ہے, پھر بڈنگ بھی لوگوں نے روک سکنی. اور میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتی ہوں, ڈونٹ گو انٹو دا بڈنگ. یہ جو بڈنگ وار ہے اس میں لوگوں نے پہلے بھی غلطیاں کی تھیں, اب بھی غلطیاں کریں گے. آئیے آپ کی ملاقات کی طرف لے کے چلتے ہیں, کیونکہ مارگیج کے حوالے سے دس از اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ, اور میری ریکویسٹ ہے اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے. اکال مارگیجز سے ہمارے ساتھ ہیں جناب شیراز شفیق صاحب. شیراز, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ماجد بھائی, آپ ہی میرا خیال ہے بات کریں گے تو زیادہ بہتر ہے کہ میں توجہ کے ساتھ سن سکوں.
ہاں, شیراز شفیق, اکال مارگیجز ان کا تعلق ہے, 4165028000 ان کا فون نمبر ہے. شیراز, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آپ سے ٹھیک ہے؟
الحمدللہ. کچھ پہلے شیراز شفیق ان اکال مارگیجز کے بارے میں بتا دیں.
جی ماجد بھائی, ہم لوگ اکال مارگیج والے جو ہیں بیسیکلی پچھلے 20-22 سال سے مارگیج انڈسٹری کے اندر ہم لوگ سولوشن بیس سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. کسی بھی قسم کی سچویشن ہو تو کال مارگیج اپنے نام اور کام دونوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے. آپ کو کسی بھی قسم کی مارگیج چاہیے, چاہے آپ کو ریزیڈینشیل مارگیج دیکھ رہے ہیں یا آپ کو کمرشل مارگیج چاہیے یا کسی قسم کی کوئی لائن آف کریڈٹ چاہیے, ہوم اکوٹی لائن آف کریڈٹ چاہیے, یا اس کے علاوہ آپ کو پلان بن رہا ہے فیوچر میں آپ کو فرینچائز بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو فرینچائز کے لیے لون چاہیے, بزنس لون چاہیے, تو کسی قسم کا بھی کوئی اکویپمنٹ لون چاہیے, تو ان سب چیزوں کے لیے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی میرا نمبر نوٹ کر لیں, شیراز شفیق اکال مارگیج, 416-502-8000, 416-502-8000.
شیراز, بہت ساری چینجز آئی ہیں پچھلے دنوں میں, یو ایل آئی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ کتنی ساری چینجز آئی ہیں, مگر آج ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے انہوں نے, اینڈ جو اسٹریس ٹیسٹ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے افورڈ نہیں کر سک رہے تھے, اس میں بھی ذرا لینینسی کی کچھ بتائیں گے اس کے متعلق آپ؟
جی ماجد بھائی, ہوا یہ ہے کہ آج جو پالیسی چینج ہوئی ہے وہ یہ ہے, یہ بیسکلی امپلیمنٹ ہونی ہے 21 نومبر سے.
صحیح,
21 نومبر کے بعد اگر کوئی بہن بھائی جو کہ انشور مارگیج لے کے بیٹھا ہوا تھا پہلے کسی بینک کے پاس, उनसे स्ट्रेस टेस्ट का जो बेसिकली है वो खत्म रिमूव किया जा रहा है। अगर उन्होंने बैंक को स्विच करना है या उन्होंने किसी दूसरे बैंक में जाना है, कुछ भी करवाना है उन्होंने, तो उनको स्ट्रेस टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा। स्ट्रेस टेस्ट क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। स्ट्रेस टेस्ट ये लेट से जी बैंक आपको कह रहे हैं जी आपको हम लोग दे रहे हैं 6% आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, 6% आपका इंटरेस्ट रेट, ऑन टॉप ऑफ दैट 2% वो स्ट्रेस टेस्ट का डालते थे तो 8% के ऊपर आपको क्वालिफाई करना पड़ रहा था। अब क्या हो रहा है, अब आपको सिर्फ 6% के ऊपर ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। जहां पे आपको पहले स्ट्रेस टेस्ट डाल के 3 लाख की मॉर्गेज के लिए 81,000 की इनकम चाहिए थी, अब वहां पे आपको 71,000 की इनकम चाहिए होगी। तो ये देखिए कि एक उन्होंने कैसी आपकी बना दी है कि 71,000 के अंदर आप इजीली अब क्वालिफाई कर जाएंगे 3 लाख के लिए। अगर आप फर्स्ट कर लें कि जी आप टीडी बैंक के साथ हैं और आप किसी और बैंक के साथ मूव करना चाह रहे हैं तो आपको स्ट्रेस टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप दूसरे बैंक में जाएंगे, उनसे जाकर बोलेंगे जी ये हमारी मॉर्गेज है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इजीली आपकी उस मॉर्गेज को स्विच कर देंगे। तो आपको किसी भी किस्म की वहां पे फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, किसी ब्रोकर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप इजीली अपना जो है काम कर लेंगे। दूसरी बात ये है माजिद भाई के कुछ जो चेंजिंग है वो पीछे भी आई है जिनमें मोस्टली अमोर्टाइजेशन की चेंज है। देखिए मैं थोड़ा सा यह भी बताता चलूं कि जो होती थी ना CMSC की जो आप बात कर रहे थे आरफा जी, इंश्योर्ड मॉर्गेजेस जो पहले अमोर्टाइजेशन 25 साल की थी वो उन्होंने इंक्रीज करके 30 साल कर दी है। तो इट मीन के अगर आप लेस देन 20% पे घर बाय करते हैं 10% पे 15% पे या 5% पे, जो मॉर्गेज आपकी होनी थी 25 साल के टेन्योर के ऊपर वो अब चली गई है 30 साल के
ऊपर।
उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ा है कि पर $100,000 आपको 25 से 35 का फर्क पड़ गया उसमें। उसमें अब क्या होगा कि जब आप मॉर्गेज करवाएंगे आपकी 5 साल की मॉर्गेज बन रही है, 500,000 की मॉर्गेज बन रही है, तो $250-$300 का आपको फर्क बन जाएगा इजीली। तो आप इजीली जो है ना आपकी बनना शुरू हो गई है, आपकी अफोर्डेबिलिटी बनना शुरू हो गई है। जहां पे आप पहले 2500 पे कर रहे थे वहां पे आपकी मॉर्गेज 2200 बन जाएगी, 2250 बन जाएगी। तो ये अब आप आहिस्ता आहिस्ता अफोर्डेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहां पे पहले घर की लिमिट होती थी $1 million तक कि आप 5% के ऊपर 1 million तक का घर बाय कर सकते थे, अब वो उनने उठा के उसको कर दिया 1.5 million तक। तो इट मीन के जो प्रॉपर्टी पहले आप 5% के ऊपर 1 million तक बाय कर सकते थे, अब वो आपकी उन्होंने रेंज बढ़ा के आपकी 1.5 मिलियन तक कर दी है। तो देखें कितनी ज्यादा चेंजिंग आ रही है। तो जिस तरह से आफा जी ने पहले बोला है जी कि देखें कि इस वक्त बायर मार्केट है, इट्स अ वेरी गुड टाइम, इस वक्त आप बाय कर सकते हो। अगर किसी ने कोई छोटा मोटा घर लेना है, गवर्नमेंट बहुत सारी चेंजिंग कर रही है, आप ये सारी इन सारे के सारे मौकों से फायदा उठा सकते हो और अपने घर को बना सकते हो। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हो जी, मेरा नंबर नोट कर लें, शिराज शफी का कॉल मॉर्गेज 416-502-8000।
शिराज शफी का फोन नंबर है। एंड अगले आते दिनों में हम स्ट्रेस टेस्ट की और बात करेंगे कि किस तरीके से और कितना फायदा होगा आपको, जो कैलकुलेशन होगी स्ट्रेस टेस्ट के लिए तो वो किस तरीके से। शिराज का कहना यह है कि भाई आप एक बैंक से दूसरे बैंक में जाएंगे तो आपको स्ट्रेस टेस्ट की देने की जरूरत नहीं है, वहीं से वही चीज आप ट्रांसफर कर सकते हैं। खैर इसकी और डिटेल जैसे जैसे आती रहेंगी और डिटेल्स शिराज से हम मालूम करते रहेंगे। एंड शिराज जैसे आपको पता है कि हमारे साथ ट्यूसडे और थर्सडे को होते हैं, तो अगले ट्यूसडे को शिराज से हम और इसकी डिटेल मालूम करेंगे। ठीक शिराज, थैंक यू सो मच।
थैंक यू माजिद भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो याद रखें कि अगर हम लोगों ने आपकी फाइल को रिव्यू करके एक मतलब आपको ओके कह दिया, हम हमेशा अपने वादे पे पूरा करते हैं।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह
बहुत शुक्रिया माजिद भाई और शुक्रिया आपका। आज आप रूबी ज्वेलर्स पे भी दो घड़ी के लिए मैं आपको लेकर के चलूंगी। रूबी ज्वेलर्स पे बहुत ही खूबसूरत वेराइटी चूड़ियों वगैरह की आई है। एंड आई थिंक हमारा टिकटॉक पे अगर आप उसको देखें तो आपको नजर आएगा कि कितनी वेराइटी उनके पास चूड़ियों की मौजूद है। आप रूबी ज्वेलर्स को एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा, 7086 एयरपोर्ट रोड पे रूबी ज्वेलर्स। अच्छा, ऐसी जगहों पे जाते हैं बाजों का तो रेफरेंस बड़ा रोल प्ले करता है। इकराम भाई है उनकी टीम के, किसी भी रुकन को आप पहले आप अपना पूरी बातचीत करें, मेल मुलाकात करें, पूछें और उसके बाद फिर उनसे कहिएगा कि भाई आरफा ने स्पेशली ताड़े बारिश किया सी, आपने रिंग्स लेनी है। बल्कि मैं देख रही थी बहुत खूबसूरत ताज भी
मैंने कहा इलाज के दौर में भी लोग ये देखिए जी टिकटॉक पे जो लोग देख रहे हैं, अगर आप देखें तो इसमें जो गले के साथ क्या चोकर्स, लुक एट द कड़ों के डिजाइन, माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी ले अल्लाह उसके नसीब में करे, चूड़ियां कड़े हर तरह के डिजाइन आपको नजर आते हैं। और एक बात याद रखिएगा, पहनने को में लोग आर्टिफिशियल भी पहन लेते हैं, आप एक पहन लें मगर पहने वो चीज जो आपका दिल भी मुतमईन हो, ये दिवाली का स्पेशल है। अच्छा, आप चोकर्स में देखें ना, एक मैं आपको चोकर दिखाती हूँ, जो लोग टेलीविजन देख रहे हैं, मुझे कभी मैंने चोकर वगैरह नहीं पहने, वो जो गले के साथ लगे होते हैं, नेवर। और मगर एक बड़ा ही, ये देखे रूबी का कितना खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था, कड़े देखे कितने बड़े बड़े और प्यारे कड़े हैं। जाइएगा जरूर और आप एक दफा रूबी ज्वेलर्स इकराम भाई से मुलाकात कीजिए। अच्छा, एक कंगनियों का सेट था, वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगा, उसमें सिर्फ 6 कंगनियां थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत चूड़ियां जेवरात के लिए। रूबी ज्वेलर 7086 इकराम भाई या उनकी टीम को कहिएगा, साजो आवाज आरफा मुजफ्फर ने भेजा है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अमेजिंग। 9056776888 9056776888 उनका नंबर है। लेकर के जाना चाहती हूँ आपको, मैंने पाकिस्तान लेके जाना, अगले 5 मिनट में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पहुंचेंगे। आपको बताइए कि ब्रिक्स जो ये जो क्वार्ट्स ब्रिक्स के मुकाबले में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया और जापान, इन्होंने क्वार्ट्स 4 ममालिक पर मुश्तमिल ये टीम बनाई थी, वही एशिया को रिएक्ट करने के लिए या एशिया में अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा करने के लिए। भाई आज चाइना ने बड़ा कमाल कर दिया, इससे पहले चाइना ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का तजुर्बे किए मगर नेवर इन इंटरनेशनल वाटर, यानी बहरुल काहिल के ऊपर तमाम ममालिक और खासतौर पर जो इस वक्त जिन ममालिक के पास हुकूमत है या जिन ममालिक के पास ताकत है उनका भी इक्वल उसमें रोल है। चाइना ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया है और बैनुल अक्वामी जो पानी है उसमें किया, बैरुल काहिल में, ये इस पे वॉरहेड लगा हुआ था, मतलब बजहर एक्सपेरिमेंटल इनका था। इससे पहले इनका अपना एक सहरा है जिसकी तरफ इन लोगों ने ये तजुर्बात किए थे, फर्स्ट टाइम इन्होंने मिसाइल छोड़ा और वो मिसाइल ने आके गिरना था एक खास मुकाम पे, बहरुल काहिल पे। अब चाइना तो ये कहता है कि हमने जो मुतल्लिका ममालिक इर्द गिर्द के थे उन तमाम को इन्फॉर्म किया, मगर जापान कहता नहीं, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। अब लेट्स सी चाइना ने तजुर्बा क्यों किया, वो कहते हैं कि इस वक्त की जो दुनिया की बदलती सूरत हाल है उसमें दुनिया को एक चैप्टर पढ़ाना बड़ा जरूरी था, यस वी आर अ पावर। जापान की हुकूमत ने, इन्होंने कहा कि बुध की रात को तकरीबन 8:44 पर यह तजुर्बा किया गया लॉन्ग रेंज मिसाइल का, जो कि आके बैनुल बरियाजम जो बरियाजमों के दरमियान ये मिसाइल जो है ये काम करेगा, और चाइना कहता है कि उसने इन्फॉर्म किया था, वेरा जापान कहता है कि हमें इस बारे में
वहां पर आजकल फजी डेंजरस इसलिए है, दुनिया जो हिली हुई है वो इसलिए है कि हर एक की जो नेवल है वो वहां पर उसी पानी में है।
यस, तो चाइना ने अपना फिर मसल दिखा दी है ना। चाइना आपको बताते हूँ फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करता, बहुत से लोग चाइना के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सा मवाद छापते हैं, मगर वो अपनी पेस में चलता चला जा रहा है। अमरीका और चीन के बाहमी ताल्लुकात 1 साल से बेहतर हुए हैं, तमाम खत्ते में चीन के अपने असर रसूख को वसत देने की कोशिश वजह चाइना और अमेरिका के दरमियान जो तनाव या टेंशन है मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। ये एक वजह चीन और फिलिपाइन के बैरी जहाजों के दरमियान मुतनाजा पानियों में टकराव के वाक़े आती हैं, और गुज़श्ता माह जापान ने इस वक्त लड़ाका तैयारों को फिजा में भेजा जब इसने चीन की जासूस तैयारों पर फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी का इल्जाम आयद किया था। चीन की तरफ से ताइवान पर दावा किया जाता है अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, ये भी एक टेंशन की बहुत बड़ी वजह है। जो चाइना है वो कहते हैं उसके बैरी जहाज और लड़ाका तैयारे जो हैं ताइवान के पानी और फिजाई हदूद में भेजता रहता है अक्सर औकात ही, बल्कि मुझे याद है नंजी पलोसी जब गई हुई थी तो भी इन्होंने एक्सरसाइज कर मारी थी वहां पे। बहरहाल ताइवान ने असला को फरोख्त के रद्द अमल में अमरीका से जौहरी असला से मुतल्लिक मुज़ाकरात जो थे वो मुअत्तल कर दिए थे। ये जो नई टेक्नोलॉजी है इस में एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सरबरा उन्होंने बताया कि ICBM ऐसे मिसाइल होते हैं जिनकी रेंज बैनुल बर्रे आजमी होती है, यानी एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम और तीसरे बर्रे आजम तक इनकी रेंज होती है। बहरहाल इंडिया चाइना को अपना हरीफ समझ, देखिए साहब इंडिया की पॉलिसी बहुत कमाल की है, इंडिया ने चाइना के साथ रिकॉर्ड बिजनेस भी किया है, मगर कारोबार इस वो कहते हैं लड़ाई अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह पे है और कारोबार अपनी जगह पे है। उन्होंने हर चीज का एक खास मुकाम मुकर्रर किया हुआ है और अब वो कहते हैं इंडिया ने अपना हरीफ जो चाइना, इंडिया जो चाइना को अपना हरीफ कहता है, मगर साथ ये दावा भी करता है कि इसके मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक बनती है, जबकि चीन के लिए ऐसे इतने तवील रेंज के मिसाइल की जरूरत बाकी नहीं रहती। लेट्स सी। और बहुत बड़ा ये मैसेज था जो चाइना ने कल रात को 8:44 पर यह तजुर्बा किया, इट वॉज अ बड़ा पैगाम था। एक यूनाइटेड नेशंस का पता ही है कि इजलास जारी है और कल की भी हर इंसान ने ही बात की, गजा की बात की, लेबनान की भी बात की। आज जो महमूद अब्बास हैं फलस्तीनी सदर, उनका जो पैगाम है ना बड़ा एक कमाल का गया है। फौरी तौर पे रिएक्शन दिया इसका, इसराइल ने इस पे रिएक्शन दिया, हम उसकी भी बात करेंगे, मगर उन्होंने ये कहा कि आप अमेरिका के ऊपर तनकीद की कि आप किसकी बात करते हैं, जेनोसाइड की अगर आप बात करते हैं, बच्चों को मार दिया गया और आप असला फिर भी उनको फराहम कर रहे हैं। अब्बास ने कहा कि वाशिंगटन ने इसराइल को गजा में अपनी जंग के लिए सफारती ढाल और हथियार फराहम करने का सिलसिला वहां की हलाकतों की तादाद में इजाफे के बावजूद जारी था। अब ये जो एक नंबर आया था तकरीबन 41,800-41,500 का जो एक नंबर है, ये वो नंबर है जो कि आपको सरकारी तौर पर नजर आता है, ये तादाद इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे ज्यादा यकीनन है। अकबर मुद्दे की जनरल शांति से खिताब करते हुए महमूद अब्बास ने कहा कि ये जुर्म बंद करें, अब बंद करें ये बच्चों और औरतों का कत्ल, नस्ल कशी को बंद कीजिएगा, इसराइल को हथियार भेजना बंद कीजिएगा और मतलब इस पागलपन की कोई इंतहा होना चाहिए। गजा और मगरबी किनारे में हमारे लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी दुनिया पर उन्होंने डाली। कहते हैं कि अमेरिका अकेला खड़ा हो और जाड़ी खड़ा हो और कहा कि वही एक अमेरिका जो है वो साथ खड़ा है और वो असला फराहम करता चला जा रहा है और लड़ाई जारी। अमेरिका ने हर चीज को वीटो का के जरिए अपना हक इस्तेमाल करते हुए इस जंग को खत्म होने नहीं दिया। अमेरिका ने इसराइल को वो मोहलक हथियार दिए जिसने हजारों बेगुनाह शहरियों और बच्चों और औरतों को मारने के लिए इस्तेमाल किए। महमूद अब्बास ने यह भी कहा कि इससे इसराइल को जारी रखने की हौसला अफजाई हुई। वाशिंगटन इसराइल का सबसे करीबी इत्तेहादी है। यहां पे मैं आपको बताना चाहती हूं, इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ आगे, इसराइल ने जिस पर रद्द अमल दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि महमूद अब्बास साहब ने हर चीज की बात तो कर ली मगर उन्होंने हमास का जिक्र भी नहीं किया कि भाई फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। तो उन्होंने कहा कि 26 की महमूद अब्बास ने तकरीर की और 26 में एक बार भी उन्होंने हमास का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम पुरमन हल की तब बात करते हैं जब अक्वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें यकीन दहानी दिलाई जाए हमारी अपनी बका के बारे में। हमास ने जो 7 अक्टूबर को दहशतगर्द हमला किया था और ये जंग उन्हीं की वजह से शुरू हुई थी, 251 लोगों को यरगमाल बनाया था जो जिनमें 97 में अब भी गजा की पट्टी के अंदर कैद है, जिनमें वो 33 भी शामिल है जिनके बारे में इसराइली फौज का कहना है कि उन 33 को यानी 97 में से उन 33 को हलाक किया जा चुका है। बहरहाल ये प्रोग्राम साजो आवाज और इस वक्त हमारे उस मोजज़ मेहमान का वक्त हो गया है जनाब इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूं। और हमारा कोई भी इंटरव्यू यूं मत समझिएगा कि किसी किस्म की कोई सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें। आज ऑफ द रिकॉर्ड में आपके साथ आई विल नॉट बी एबल टू शेयर द नेम, मेरा एक पाकिस्तान आर्मी के इंतहाई सीनियर मोस्ट इंसान से मेरी बातचीत ही समझ लीजिए कि हुई, जिसमें मुझे बताया गया कि दे आर नॉट हैप्पी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड द ओनली थिंग दे वर कंसर्न इज हिज कंसर्न वाज कि पाकिस्तान की फौज ने 65 की वॉर के बाद जो अपना 71 की वॉर के बाद जो अपना एक इमेज गमाया था उसको दोबारा बहाल करने में टाइम लगा, और भी बहुत से मौके का उन्होंने जिक्र किया, मगर उन्होंने कहा जो इस वक्त की सूरत हाल है इसकी रिकवरी विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। पाकिस्तान की अफवाज हमारा कल का प्रोग्राम, आप तमाम से दरख्वास्त है कि अगर आपने नहीं सुना तो उस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा, बेशतर इसके कि आप कोई इमोशनल बात करें आप उस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा। ये प्रोग्राम तनवीर सुल्तान साहब के साथ प्रोग्राम है, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि उस प्रोग्राम को जरूर सुनिएगा। इसी तरह से जनाब इम्तियाज गुल साहब से जो मैं बात करती हूं, मैं आपको यकीन दिलवाती हूं इसमें कोई सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, द मैन इज होल्डिंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन और उन्होंने आज तक कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइजिंग एक्शन उनका नहीं मुझे नजर आया जनाब इम्तियाज गुल की जिंदगी में। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम आरिफ अबैन, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं,
बहुत शुक्रिया सर आपका, और यू आर लुकिंग ग्रेट सर। आज सर मैं आपसे जब मैं बात करती हूँ तो दो तीन बातें, कल बल्कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें सिंध के बारे में लिखा गया था कि पंजाब ने केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में यकीनन लोगों ने बहुत सारे सिख कम्युनिटी को देखा, गुरु नानक साहब के हवाले से समझ लीजिएगा, बहुत से लोगों ने पंजाब में अब बहुत से लोग सिख आ गए हैं जिनके कारोबार भी हैं, चाहे वो घंटा घर हैं चाहे वो गैस स्टेशन हैं अब हैं, मगर सिंध के बारे में कहा गया कि सिंध ने हमेशा डाइवर्सिटी देखी जिसमें वहां पे बेशुमार हिंदू भी आबाद हैं, बेशुमार सिख भी आबाद हैं, एंड दे ऑलवेज दे वर्क टुगेदर और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करते हुए चले, यानी कन्वीनियंस स्टोर्स भी अदर देन मुसलमानों के, हिंदुओं के और सिखों के कन्वीनियंस स्टोर्स भी हैं। आज मैं यकीनन वो डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के बारे में भी आपसे जिक्र करूंगी, एक कंसर्न आप डेवलपमेंट और रिसर्च के साथ हैं, जब हम जिक्र करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का जिक्र करते हैं तो इस वक्त दुनिया में द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड द मोस्ट नीडेड बिजनेस इज या द वर्क इज साइबर सिक्योरिटी। हर इदारे को अपने आप को महफूज करना पड़ता है, आपका कंप्यूटर है, आपकी छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, साइबर अटैक्स होते हैं, इसी तरह से सर आपका सोशल मीडिया हैक हो सकता है, इट्स वेरी कॉमन नाउ, और आप ही के प्रोग्राम के इस तवसुत पे मैं आप तमाम लोगों को कहती हूं कि आप अपनी अपनी फेसबुक के ऊपर गहरी नजर रखिएगा। डॉक्टर शाहनवाज साहब ने उनकी फेसबुक पे या उनके सोशल मीडिया पे जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मुकम्मल तौर पर उससे लाताल्लुकी का इजहार करते रहे, यकीनन उनकी साइट हैक हुई थी। आज सिंध में बाकायदा तौर पर यह कहा गया है, वहां के एक मिनिस्टर ने कहा है कि यह पुलिस मुकाबला था, मगर बेशतर इसके कि मैं इसकी तरफ चलू मैं पाकिस्तान की एक सूरत हाल के बारे में डिस्कस करना चाहती हूं। आईन में तब्दीली की जाना चाह रही है और आज एमक्यूएम ने, हालांकि एमक्यूएम के एक मेंबर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ के साथ वो अमेरिका ट्रेवल भी कर रहे हैं और वो उन्होंने कोई इजहार नहीं किया, मगर एमक्यूएम ने अपना इजहार या रिजर्वेशन उन्होंने की है कि हमें फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, उनके लव्स कोट अनकोट्स में थे, हमें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ये आईनी पैकेज के लिए इनको पता था कि शायद हम ऐसे पलड़े में हैं कि हमने ऑटोमेटिकली इनको वोट डाल देना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए तो 70 जतन किए, मगर दे टुक अस फॉर ग्रांटेड और दिस इज द टाइम के वी हैव टू थिंक ट्वाइस की वॉट वी गॉट टू डू इन द फ्यूचर। आपके नोटिस में कोई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में?
देखिए एमक्यूएम तो बहुत ही बदनाम हो चुकी है, ये हर मर्तबा जो भी क्रिटिकल मौका आता है, अदम एतमाद की तहरीक हो, वजीर आजम का इंतखाब हो, सदर का इंतखाब हो, ये बड़े पहले नखरे दिखाते हैं, इधर उधर होते हैं, मतलब लोग तासर ये देते हैं कि हम अपनी मर्जी का फैसला करेंगे, लेकिन 100% केसों में इन्होंने हमेशा वही फैसला किया जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। तो अब जब आप अगर बदनाम हो गए हैं तो इस पे परेशानी क्या है, यानी आप वही काट रहे हैं जो आपने बोया था। और ये एक बड़ी तवील दास्तान है कि अगर नवाज शरीफ के खिलाफ बेनजीर भुट्टो ने कुछ किया तो ये बेनजीर के साथ थे, और नवाज शरीफ ने बेनजीर के खिलाफ कुछ किया तो ये उनके साथ थे, जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भी थे, फिर इनके डॉक्टर फरोग नसीम, आप इनसे पूछें जरा कि ये पीटीआई की हुकूमत में शामिल तो थे डॉक्टर फरोग नसीम एमक्यूएम के नुमाइंदे के तौर पे, लेकिन क्या उन्होंने कारनामा अंजाम दिया, यानी इमरान खान एक अपने तरफ से अपने तई एक बड़े इनकलाबी एजेंडे पे आए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो फौजदारी कानून है 1860 और 1898 का, उसमें तब्दीलियों की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर फरोग नसीम सिर्फ अपनी एक नौकरी करते रहे और उस दौरान वो कवानीन जिनकी वजह से पाकिस्तान की अदालतों और जेलों में 90% के करीब लोग पड़े हुए हैं गलत कानून के इतलाक की वजह से, वो कुछ भी ना कर सके उस हवाले से। तो ये अपनी शिपिंग की वजारत माशाल्लाह हमेशा ले लेते हैं, ये आईटी की वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों वजारतों में बड़ा पैसा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत को अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ से भी फंड मिलते हैं, इस तरह एक दो और तंजीमें हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इदारों को माली मदद फराहम करते हैं। सो वो एक वाहिद एक मिनिस्ट्री है जिसके पास अपने बड़े फंड्स होते हैं, लिहाजा उन फंड्स का इस्तेमाल भी तो करना होता है। आपको मालूम है जब वजीर आते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, उनकी भी कुछ जरूरतें होती हैं, तो बड़े मजे से ये वो उस वजारत में आके बैठ जाते हैं। फिर इसी तरह शिपिंग की वजारत ये ले लेते हैं, और आपको मालूम है कि शिपिंग स्मगलिंग का, गैर कानूनी तिजारत का कितना बड़ा जरिया है, क्योंकि कराची पोर्ट ट्रस्ट में इनके लगाए हुए लोग बैठे हैं, इस तरह कस्टम्स में वहां पे इनके लगाए हुए लोग बैठे हैं, और ये फिर जो दूसरे हमारे हुकाम हैं जिनको सिक्योरिटी भी कहते हैं उनके साथ मिल मिला के माशाल्लाह इनके बारे न्यारे होते रहते हैं। तो ये जो फजूल किस्म की ये शिकायत करते रहते हैं, अब इनकी ये बात सुनने वाला, इन पे एतबार करने वाला कोई नहीं है, और यही वजह थी कि 2024 फरवरी के इंतखाबात में इनको बड़ी बुरी मार पड़ी। लेकिन फिर वो इनकी खुशकिस्मती है कि जो इनको फैसले अपने सुनाते हैं, जो इनको ठप्पे लगाने का कहते हैं, उन्होंने इनको इनकी तवक्को से भी ज्यादा सीटें दे दी, अब उनसे वो सीटें संभाली नहीं जा रही हैं, और इनको बड़ी अब गैरत आ गई है कि जनाब हमें ग्रांटेड लिया जाता है। ओ भाई, आप अपनी इज्जत अगर खुद ना करें, इज्जत करमाना ना जाने, और हर मरतबा दुम हिलाते हुए पीछे पीछे चल पड़े जहां आपको कहा जाता है, तो फिर तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, इसमें आपका शिकवा किसका।
बहुत शुक्रिया। वो कहा जाता है ना कि कहते हैं कि इनको फॉर ग्रांटेड इसीलिए लिया गया कि जाहिर है इनकी सरपरस्ती को ये खास इदारा कर रहा है, और उन्होंने ये कहा कि हम शायद इसको हजम कर लेते, मगर वो जो मुकाबला आ गया ना कि जनाब फजलुर रहमान साहब को जो इम्पोर्टेंस दी गई, वहां पे एमक्यूएम महसूस कर रही है कि दे आर डेफिनेटली बिल्कुल उनको किनारे के साथ लगा दिया गया। मैं सर आपको जब ये बात कर रही हूं तो एमक्यूएम के एक रहनुमा जो हैं वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी तशरीफ लेके गए हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान को इमदादी पैकेज दे दिया है, कहा जाता है कि दरमियान में कोई मिनी बजट भी आएगा, और वो कहते हैं ना कि जब बाज़ औक़ात कोई काम होना होता है तो ना ना की आवाजें ज्यादा आना शुरू हो जाती हैं। एमक्यूएम ने शरायत बड़ी कड़ी लगाई हैं, क्या फरमाएंगे उनके बारे में? आपके नोटिस में कुछ शरायत आई, वैसे सरफेस तो हो गई है।
मुझे उन शरायत का ज्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो भी शरायत लगाएंगे आखिर में इन्होंने अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करना है, इसलिए कि ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने काने हैं, और इन्हें ये जब आंखें दिखाना शुरू कर देते तो फिर इनकी पुरानी फाइलें खुल जाती हैं। लिहाजा ये महज कोशिश, इसको कहते हैं पोस्चरिंग, यानी आप महज लोगों को दिखाने के लिए कि हम तो बड़े बासूल हैं, बड़े ईमानदार हैं, हमने सवालात कर दिए हैं हुकूमत से, जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा हम काम इनके साथ नहीं करेंगे, इनकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, गुज़श्ता 40 वर्षों में तो इन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, तो अब तो बड़ी अनहोनी हो जाएगी, ये बड़ा इनकलाबी दिन होगा कि जब ये उसूल पे खड़े होके कहें कि हमने उस आईनी पैकेज की हिमायत नहीं करनी है जिसको हमने देखा ही नहीं है। यानी ये तो पहले सब लाइनों में खड़े थे, अब कौन सी ये उसूल की बात कर रहे हैं जो आज से जो 16 सितंबर की बात है, और उसके बाद फिर अगले इतवार की जो बात आई थी उसमें तो एमक्यूएम के और एएनपी के तो शायद एक साहब थे, लेकिन पीपल्स पार्टी और इसके पीएमएलएन के, इनके जो तमाम अरकान थे मिल मिला के वो बन रहे थे कोई 212। ये तो सब पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे, पूरी रात इन्होंने पार्लियामेंट हाउस में गुजारी, तो ये क्या दूध पीते बच्चे हैं? उस वक्त तक किसी एक शख्स ने मुसविदा नहीं देखा हुआ था, किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी थी, और इन लोगों ने पार्लियामेंट हाउस में सोफों पे फर्शों पे लेट के तकरीबन सारी रात गुजार दी। अब ये लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि ये बड़े उसूल परस्त हैं, तो ये मेरे ख्याल है किसी और को बेवकूफ बनाए। अब ये जमाना बेवकूफ बनने वाला नहीं है, आज की जो खास तौर पे जो नई नस्ल है वो आपकी अब परफॉर्मेंस देखती है और आपके जो कारनामे हैं माशाल्लाह उनको वो याद रखती है, आसानी से भूलने वाली नहीं है। और अभी तो अरिफा बहन आपको पता है साइबर स्पेस में हर चीज पड़ी हुई है।
सही।
आपने मैंने जिस मौके पे जो कुछ कहा, लोग गूगल करते हैं 4-5 अल्फाज लिखते हैं तो हमारी आपकी बातें वो एकदम सामने आ जाती हैं। तो, जी
सर, मैं आप जब ये तमाम की तमाम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो टीम इस वक्त अमेरिका गई हुई है, आपका क्या ख्याल है कि ये कहीं कोई मुल्क, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने बात की है मौसमियाती, वो एक स्ट्रांग बात और सही पॉइंट मुझे लगता है वो कन्वे कर सके कि दुनिया जहान में प्रॉब्लम है मगर हम गरीब मुल्क हैं और जब बारिशें आती हैं तो हमारा नुकसान ज्यादा आता है। डू यू थिंक कोई उन्होंने कंक्रीट बात की है या कुछ, क्या अब तक की जो गुफ्तगू शुनीद आपके सामने आई है क्या लगता है आपको?
देखिए, तकरीरें तो करना बड़ा आसान होता है, ये इनको कोई लिख के दे देता है, ये वो तकरीर आगे झाड़ के वापस आ जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहां पे आईएमएफ का पूरा एक मिशन बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, वर्ल्ड बैंक का मिशन बैठा हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है यहां पे, वो ये देखते हैं कि इनके तौर तरीके क्या हैं। यानी एक तरफ वो आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए कि क्लाइमेट चेंज, हम बड़े मुतासिर हुए हैं, बर्बाद हो गए हैं, और दूसरी तरफ आप देखें जो इनका एंटूराज होता है वो लिमोसिन्स ये न्यूयॉर्क में किराए पे लेते हैं, मतलब अपनी एम्बेसी की गाड़ी में नहीं बैठेंगे क्योंकि वो तो इनकी शान के खिलाफ है। तो ये वो लिमोसिन्स हैं जिनका मालूम नहीं, शायद आपको आइडिया हो कि एक एक दिन का कितना इनको किराया पड़ता है। तो जो डोनर है वो ये भी तो देखता है ना कि आप कितना वफद लेके आए हैं, किसके पैसे पे, और इस वक्त तो तमाम का तमाम पैसा अमलन कर्ज का पैसा है, यानी क्योंकि हमारी हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी इसके खराजात से 50% कम है, जिसका ये मतलब है कि पूरी हुकूमत, पूरी रियासत जो है वो कर्ज पे चलती है, लिहाजा एवरी सिंगल डॉलर दैट वी आर स्पेंडिंग बेसिकली इज बोरोड मनी, चाहे वो मुल्क के अंदर है चाहे वो मुल्क के बाहर है। और आप वो बात कर रही थी आईएमएफ की, तो आज ही सुबह ही हमारी इत्तेफाकन एक बड़ी आला सतीक कुछ डिप्लोमेट से मुलाकात हो रही थी, तो तो जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं वो पूछने लगे कि आपका क्या ख्याल है, $7 अरब अभी पाकिस्तान को मिल जाएंगे तो इससे कोई हेल्प मिलेगी पाकिस्तान को? तो मैंने कहा कि आप बड़ी भोली हैं, आप नई नई पाकिस्तान आई हैं, पाकिस्तान को इस तरह के 4 पैकेजेस भी मिल गए ना, यानी $28 अरब भी मिल गए, तो पाकिस्तान के मसाइल हल होने वाले नहीं है जब तक ये माइंडसेट जो है, ये शाहाना अंदाजे हुकूमत, तर्ज हुकूमत की ज़हनियत जो है, ये जब तक तब्दील नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। और दूसरी बात, ये तमाम बड़े बड़े घराने जिनके अपने पावर प्लांट चल रहे हैं, जो ये बराह रास्त या बिलवास्ते तौर पर शेयर होल्डिंग है इनकी, हमें तो ये बताया गया कि साहिवाल, हपको और पोर्ट कासिम गालिबन कोई 3 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि माशाल्लाह लाहौर के हमारे हुक्मरान घराने के हैं, फ्रंट पे उनके चीनी लोग हैं, लेकिन असल में मालकान ही है, उन्होंने 10 साल के लिए चीनियों को ऑपरेशन और मैनेजमेंट का ठेका दे दिया हुआ है। तो जब हालात ऐसे हों कि आपने इदारे कायम कर दिए और वो इदारे फिर इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के आवाम का खून चूसने के लिए, यानी हर महीने बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, उस इजाफे की एक वजह तो IMF है, उन्होंने कहा हुआ है कि हर महीने आपने इतने 100 अरब, 70-80 अरब रुपए आपने जेनरेट करने हैं, और दूसरा जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं कि इनको लाजमी कैपेसिटी पेमेंट्स देनी होती हैं, भले कोई एक यूनिट भी पैदा नहीं कर रहा बिजली घर। तो ये तमाम चीजें जब तक दुरुस्त नहीं होंगी, जब तक ये कैपेसिटी पेमेंट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी डॉलर की के डॉलर में इनको अदायगियां खत्म नहीं होंगी, चाहे वो सरकारी प्लांट है या निजी प्लांट है, उस वक्त तक तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के मसाइल हल होने वाले नहीं है। और इस हवाले से हमारी हुक्मरान अशराफिया, चूंकि ये भी मालकान हैं IPPs के और उनको एक मुफ्त का एक मिला हुआ है, इनिशियली इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली, अब जनाब वो निचोड़ रहे हैं, और नतीजा क्या है, ये तो निचोड़ रहे आवाम निचड़ रहे हैं बेचारे बार बार की बिजली की कीमतों में इजाफे से। तो लिहाजा पाकिस्तान को IMF का कर्जा मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ उस वक्त पड़ेगा जब ये हमारे शाहाना जहनियत जो है ये तब्दील होगी।
बहुत शुक्रिया सर। अभी आपने बात की तो जर एक तो ताकत का नशा है, पोजीशन का नशा है, तो आपने कहा कि अपनी तनख्वाह के ऊपर, मुझे आई डाउट इट वेरी मच, अभी जो मिलेगा पैसा और उस पैसे के ऊपर बहुत सारे आपके इदारे और बहुत सारे आपके हाईली प्लेस्ड जो मेंबर्स हैं वो परसेंटेज हासिल करते हैं हर चीज में। हमने तो सिर्फ 10% का जब जिक्र किया था तो जरदारी साहब का नाम सुनते थे, अब तो ये कई गुना ज्यादा परसेंटेज है जो आपके इस वक्त के जो लोग हैं। 3 ही तो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपनी अपनी मर्जी की पोजीशंस फिल करवाना, ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी के लगवाना, और फिर जहां से यहां से वहां से पैसा हो तो उसमें परसेंटेज हासिल करना। आपने कहा कि IMF से और वर्ल्ड बैंक के कुछ लोग पाकिस्तान में बाकायदा मौजूद हैं, वो इन लोगों को वॉच भी कर रहे हैं, मगर आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारों ने खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने का क्या, व्हाट मजबूती इट इज सर, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? मतलब वी आर द बैगर्स आर नॉट चूजर्स, दिस इज कहा तो यही जाता है।
वो आपने शुरू में जो तमहीद बांधी थी ना, कि बल्कि शुरू के सेगमेंट में आपने कहा कि चीन अमेरिका ताल्लुकात
जी
पाकिस्तान के लिए बड़ी उसकी अहमियत है,
तश्वीश
भी है, और पाकिस्तान दरमियान में बेसिकली सैंडविच हो जाता है
जी।
तो बुनियादी तौर पे इस वक्त IMF जो गुडी गुडी हो रहा है पाकिस्तान के साथ, उसके पीछे वाशिंगटन है, यानी अमरीकी हुकूमत है। अमरीकी हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि छोटे छोटे टुकड़े डाल के पाकिस्तान को IMF के जरिए चीन से दूर रखें, क्योंकि बार बार IMF में ये बात होती है कि जो कर्जा हम देंगे वो चीन के कर्जे की वापसी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये एक बाकायदा शर्त है। इसी तरह چین کے ساتھ جتنے معاہدے پاکستان نے کیے ہیں اس میں ظاہر ہے کچھ خفیہ معاہدے بھی ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کے حوالے وہ معاہدے بھی کیے گئے ہیں کیونکہ امریکی اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ آخر پاکستان کے ساتھ چین کن شرائط پہ کام کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان اس وقت مشکل میں ہے، لیکن جو آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر تھیں بڑی خوش معلوم ہو رہی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں اشارہ نہیں ہوتا امریکی حکومت کی طرف سے، اس وقت یہ ایسے سٹیف بیٹھے ہوتے ہیں اپنی میٹنگز میں، اور $500 ملین کی قسط کا حصول پاکستان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ ماضی میں اس کی بڑی مثالیں ملی ہیں کہ کچھ ایسے پروگرام تھے کہ جو مکمل ہی نہیں ہو سکے کیونکہ آئی ایم ایف نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن ابھی تو آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم حکومت کو بھی $3 ارب مل گئے تھے، اس کے بعد یہ $7 ارب اور مل گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اگر امریکہ پاکستان کا تعاون یوں ہی جاری رہا چین کے خلاف۔
معذرت کی سر، خواستگار ہوں، آج چائنا نے جو یہ جو بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کیا اور بیچ درمیان میں کر دیا کہ بحر الکاہل میں یہ این اپنے ہدف کے اوپر جا کے گرا، جبکہ امریکہ کی افواج بھی یعنی بحری بیڑے بھی وہاں پہ موجود ہیں، جاپان کی بڑی ریزرویشن ہے، تو چائنا خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے، اپنے راستے بھی بناتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی خوش قسمتی تو یہ ہے کہ ہمارا خطہ، جیو پولیٹیکل پوزیشن ہماری بڑی اسٹرانگ ہے، مگر اس کا خمیازہ ہمیں اپنے کرپٹ پالیٹیشنز کی صورت میں پے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ تو کچھ اس کو آپ لنک کریں گے، کیسے وہ بینڈ کر سکتا ہے اس وقت مڈل ایسٹ کی صورت کے حوالے سے؟ چائنا جتنی اسٹرینتھ دکھا رہا ہے اور جس طرح سے اس نے یہ اپنا تجربہ کر دیا بحر الکاہل میں، اٹلانٹک اوشن میں، چائنا پاکستان کو اس کی کوئی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے، یا پاکستان کو وہ کچھ اپنی مرضی کی باتوں کے لیے مجبور کر سکتے ہیں اس 7 ارب کے بدلے؟
بالکل جی، اس میں دیکھیں جو ہماری حکومت نے سی پیک 2 کا ایک نعرہ لگا رکھا ہے کہ وہ بڑا جلد سی پیک 2 شروع ہوگا۔ بھئی سی پیک 2 تو اس وقت تو شروع ہوتا جب سی پیک 1 کے آپ کے تمام منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ جاتے، تو اس میں سے تو ابھی جو اسپیشل اکنامک زونز تھے جیسے رشکی ہے، دھابے جی ہے، فیصل آباد ہے، ان میں سے ایک اکنامک زون بھی کوئی 15% سے زیادہ تیار نہیں ہو سکا ہے۔ 2015 میں معاہدے ہوئے تھے، آج 2024 ہے، 9 سال گزر گئے ہیں۔ تو پھر آپ سی پیک 2 کی کیا بات کرتے ہیں؟ سی پیک 2 البتہ جو ہوگا وہ زیادہ تر بزنس ٹو بزنس ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے ہمارے بڑے بڑے ادارے بھی کارپوریٹ فارمنگ شروع کر دیں، سبزیاں اگانا
شروع کر دی ہے، بڑے ادارے نے کر دی شروع
جی، سعودی عرب کے لیے، چین کے لیے، ایک لحاظ سے ہماری جو زرعی شعبہ ہے اس کو بڑا فائدہ ہوگا اگر چین کو ہماری زرعی برآمدات بڑھ جائیں، کیونکہ لامحالہ اس میں ظاہر ہے پاکستان کو زرعی مبادلہ ملتا ہے۔ لیکن جو میری بات ہوئی 2 ہفتے پہلے، ایک صاحب ہیں بیجنگ میں ہوتے ہیں، ان سے بات ہوئی، اور وہ چونکہ پاکستانی ہیں لیکن بیٹھتے بیجنگ میں ہیں، انہوں نے جو باتیں کہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چین کی سرکاری پالیسی ہے۔ چینی بڑے بیچارے مہذب قسم کے لوگ ہیں، جب سرکاری سطح پہ بات کرتے ہیں بڑے ہی نفیس انداز میں، اور یعنی کھل کے آپ کو انکار بھی نہیں کرتے ہیں، سخت بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ان صاحب نے میرے ساتھ جو انٹرویو کیا اس میں جو باتیں کی، اس سے یہ بات واضح ہے کہ چین کی حکومت یعنی اب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملات طے کرنے میں اب مزید دلچسپی نہیں لے رہی، وہ یہ چاہتی ہے کہ مختلف کارپوریشن سے اور بینکوں سے جو قرضے لیے گئے ہیں یہاں پاکستان میں انفراسٹرکچر، موٹر ویز کے لیے اور بجلی گھروں کے لیے، ان قرضوں کا کم از کم سود ہی ادا کر دیں، اور اصل زر بھی واپس کریں، اور یہ کہ چین کی حکومت بحیثیت مجموعی خوش نہیں ہے، اور اب ان کی یہی کوشش ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ بزنس مین اور سرمایہ کار کو کہیں کہ جائیں آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ کے لیے اگر مواقع ہیں تو آپ کر لیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چین اسٹریٹجیکلی ڈس انگیج کرے گا، چین یہ علاقہ امریکہ کے لیے کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ